सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नु मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिळिदिदे ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ
परम पूज्य गुरु वरेक्षार नियम सागर मुनि महाराज की जय परम पूज्य ऋषभ सागर मुनि महाराज की जय समस्त मुनि संघ की जय नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु
पंच परमिष्टी पाठ में दूसरा प्रश्न का उत्तर देखेंगे। संसार में नमस्कार के योग्य व पूजा के योग्य कौन होते हैं? उत्तर दिया है, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों को पूर्णतः धारण करते हैं या इनको धारण करके अरहंत पद या सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं, वे ही संसार में नमस्कार व पूजा के योग्य होते हैं। नमस्कार में हम इनको नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं और पूजा में आठ द्रव्यों को लेकर या आठ द्रव्यों को लिए बिना आठ प्रकार से आठ मंत्रों को जोड़ करके जल गंधादि इनको जोड़ करके द्रव्यार्पण करते हैं। जहाँ द्रव्य अर्पण का प्रश्न आता है वहाँ पर मंत्र भी जोड़े जाते हैं। मंत्र जोड़ करके ही उनकी गुणों की उपासना करते समय जिस द्रव्य को हम अर्पित करते हैं उसके पीछे उनके गुणों की उपलब्धि की भावना भी करते हैं, कामना भी करते हैं। पंच परमेष्टियों के गुणों को प्राप्त करने हेतु जब हम उनसे कुछ अपेक्षा करते हैं तो यही अपेक्षा होती है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये धर्म है, ये धर्म के तीन रत्न हैं, इनको ही प्राप्त करने के लिए हम अपेक्षा रखते हैं, इस प्रकार भावना भाते हैं। और आपका यह रत्नत्रय जो आप साधना करते हैं, आप आचार्य परमिष्टि हों, उपाध्याय परमिष्टि हों, या साधु परमिष्टि, या अरहंत परमिष्टि हो, या सिद्ध परमिष्टि, आपके पास गुण हैं, उन गुणों की उपलब्धि के लिए मैं नमस्कार करता हूँ और उन गुणों की प्राप्ति की भावना भाता हूँ। इस भावना के काल में दिख रहा है, भावना के काल में जो मानसिक विशुद्धि बढ़ती है, आत्मिक विशुद्धि बढ़ती है मन में, उससे कर्मों की निर्जरा बहुत कुछ हो जाती है। यह पूजा का फल माना जाता है। पूजा का फल यही है कि गुणों की उपासना करने से कर्मों की निर्जरा हो। जैन दर्शन की यह विशेषता है। जहाँ परिग्रह नहीं है वहीं पर ये तीनों गुण पाए जा सकते हैं, और जहाँ परिग्रह हो वहाँ ये तीनों गुण पाए नहीं जा सकते। कौन से तीन गुण? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन गुण वहीं होना संभव है जहाँ अभ्यंतर 14 परिग्रह नहीं और बहिरंग 10 परिग्रह नहीं। बहिरंग 10 परिग्रह न होने से स्वाभाविक रूप से ही इन तीन रत्नत्रयों के धारी कोई भी परमिष्टि हो, उनकी अवस्था दिगंबर अवस्था बनती है, क्योंकि परिग्रह 10 प्रकार के हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्य और भांड, 10 प्रकार के परिग्रहों में से वस्त्र भी एक परिग्रह है, और उस परिग्रह को त्यागने से बाह्य शरीर की अपेक्षा से दिगंबर अवस्था स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होती है। और वस्त्र का त्याग होने से संपूर्ण षटकायिक जीवों की हिंसा जो होती थी अब जीवन में नहीं होगी, इसलिए हिंसा रुकती है। हिंसा के न होने से प्राणी संयम जीवन में ऑटोमेटिक आता है। प्राणियों को न मारने से, प्राणी यानी जीव, बड़े बहुत बड़े बड़े प्राणी नहीं, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के समस्त जीवों को दुख न देना, उनकी हिंसा न करना, यह प्राणी संयम है। प्राणियों को नहीं मारना, जीवों को दुख नहीं देना प्राणी संयम कहलाता है। और क्योंकि ये परिग्रह के वजह से हिंसा होती है, परिग्रह की इच्छा त्यागना, क्योंकि ये 10 परिग्रह इंद्रिय विषय हैं, इन इंद्रिय विषयों को त्यागना, इच्छा को त्यागना, इनकी अपेक्षा को छोड़ देना, इंद्रिय विषयों की आशा को छोड़ने से इंद्रिय विजय अथवा इंद्रिय संयम की उपलब्धि साधक के जीवन में हो जाती है। जो दीक्षार्थी है दीक्षा ले लेता है। विषय यानी परिग्रह, इंद्रिय विषय, वही 10 प्रकार के परिग्रह, इन परिग्रहों को ये अभी भी नहीं चाहिए और भविष्यत में भी हम इनकी कामना नहीं करते हैं। इस प्रकार संकल्प लेते हुए इस प्रकार के संकल्प के साथ यदि इंद्रिय विषयों का त्याग होता है तो इंद्रिय विजयी बनते हैं। तो इंद्रिय संयम जीवन में आता है, इंद्रिय विजयी होने से इंद्रिय संयम जीवन में आता है, और इंद्रिय विषयों का त्याग होने से, उनका प्रयोग जीवन में न होने से जीव हिंसा भी रुकती है, तो प्राणी संयम भी आता है। इस प्रकार जिसके जीवन में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों प्रकार के संयम आ चुके हैं, वे साधु परमेष्टि कहलाते हैं, उन्हीं की वंदना जैन परंपरा में होती है, उन्हीं को नमस्कार होता है, उन्हीं की पूजा होती है, उन्हीं की प्रदक्षिणा होती है, उन्हीं का पाद प्रक्षालन होता है। तीन परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, इन तीन परमेष्टियों का क्या होता है? पाद प्रक्षालन होता है। अभिषेक तो होता नहीं ना, पाद प्रक्षालन होता है, और क्या होती है? नवधा भक्ति में इनकी पूजा होती है, इनकी प्रदक्षिणा होती है, और इनको नमोस्तु शब्द से नमस्कार होता है, अभिवादन शब्द उनके प्रति प्रयोग करते हैं तो नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं। नमोस्तु यानी नमस्कार, गुणों को नमस्कार, गुण ही ना हो तो नमस्कार भी नहीं। कितने गुण होना? तीन गुण होना, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, तीन गुण होना, तीनों गुण हो तो नमोस्तु, दो गुण हो और एक ना हो, कौन दो गुण? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, दो तो हो और एक ना हो तो संयम के अभाव में सम्यक तो और सम्यक ज्ञान, ये दो गुण जो होते हैं ये पूजनीय दशा को प्राप्त नहीं होते, अपूज्य रहते हैं। संयम रहित सम्यक तो वंदनीय नहीं है, आदरणीय जरूर है, सत्कारणीय जरूर है, परंतु नमोस्तु कहने के योग्य नहीं। इसी प्रकार संयम से रहित सम्यक ज्ञान भी वंदनीय पूजनीय नहीं है, और न ही नमोस्तु शब्द से अभिवादन के योग्य है। इसलिए जैन धर्म में एक व्यवस्था की है, तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है कि जिनके जीवन में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो, चारित्र न हो, तो वो कौन? वो कौन कौन हैं? तो उन्होंने बताया दिगंबर मुनि भी इसमें आ सकते हैं और श्रावक भी आ सकते हैं, गृहस्थ के पास सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो, ऐसा हो सकता है, सम्यक चारित्र ना हो तो चौथा गुण स्थान होगा, पंचम गुण स्थान भी होगा, और यदि मुनि हो तो भी ऐसा हो सकता है, सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो लेकिन संयम न हो, चारित्र न हो, ऐसा हो सकता है, और दिगंबर हो, ये हो सकता है। तो ऐसे वस्त्र परिग्रह का त्यागी तो हो गए हैं, परंतु परिग्रह स्वरूप जो इंद्रियों की आशा है, वह आशा भीतर में है, बाहर में छोड़े हैं। इंद्रियों के विषयों को बाहर में तो त्यागा है, लेकिन अंतरंग में इनकी उपलब्धि हो, इस प्रकार की आशा है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका गुणस्थान, उस दिगंबर मुनि का गुणस्थान छठा सप्तम न बन करके नीचे के गुणस्थानों में वो आ जाते हैं। किस किस गुणस्थान में आएंगे? पांचवें में भी आ सकते हैं, चौथे में भी आ सकते हैं, तीसरे में भी आ सकते हैं, दूसरे और पहले में भी आ सकते हैं। यदि वे पहले में आएंगे तो उनके पास न सम्यक दर्शन रहेगा, न ज्ञान रहेगा, न चारित्र रहेगा। कौन सा चारित्र? सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र जिसको कहते हैं ना, वो यदि वास्तव में सम्यक चारित्र है तो उसके दो अंग नियम से होते हैं। दो पक्ष उसके, एक अभ्यंतर पक्ष और दूसरा बाह्य पक्ष। बाह्य पक्ष को द्रव्य संयम कहते हैं और अभ्यंतर पक्ष को भाव संयम कहते हैं। जहां भाव संयम होता है वहां नियम से अंतरंग में विषयों की प्रति आशा नहीं रहती है, ये समझ लेना चाहिए। अंतरंग संयम जहां है वहां, अंतरंग संयम जहां है वहां इंद्रियों के विषयों की प्रति आशा नहीं रहती। ये जो 10 परिग्रह है ना, बहिरंग परिग्रह, इनके प्रति आशा नहीं रह पाती। यदि आशा नहीं है तो अंतरंग संयम है, और यदि आशा है तो अंतरंग संयम नहीं है और बहिरंग संयम है, ऐसा होता है। यदि बहिरंग संयम है, अंतरंग संयम नहीं है, तो उस बहिरंग संयम को सम्यक संयम या सम्यक चारित्र नहीं कह सकते। आप सबको विचार करने लायक विषय बताया जा रहा है। द्रव्य संयम हो और भाव संयम न हो, ऐसी परिस्थिति में द्रव्य संयम को सम्यक संयम की कोटि में नहीं रखते, सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं रखते। ये आपको प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, चारित्र और संयम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, चारित्र ही संयम है और संयम ही चारित्र है। चाहे उसको संयम कहो चाहे उसको चारित्र कहो, एक ही बात है। पर ये चारित्र दो पक्ष वाला होता है, अभ्यंतर पक्ष और बहिरंग पक्ष, बाह्य पक्ष। अभ्यंतर पक्ष वाले संयम को भाव संयम कहते हैं और बहिरंग पक्ष वाले संयम को कौन सा संयम? द्रव्य संयम कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य संयम, भाव संयम दो प्रकार का होता है। तो जहां द्रव्य संयम हो तो वहां पर बाह्य संयम उसका नाम है, तो बाह्य परिग्रह त्यागा है इसलिए बाह्य संयम रहेगा। 10 प्रकार के परिग्रह उनके जीवन में नहीं रहेंगे इसलिए बाह्य संयम है, और उन्हीं परिग्रहों के प्रति इच्छा, रागादि भाव, अपेक्षा भाव यदि नहीं है तो भाव संयम भी रहेगा। और यदि इन वस्तुओं के प्रति, 10 प्रकार के वस्तु बाह्य परिग्रह, इनके प्रति आशा है तो फिर द्रव्य संयम तो रहेगा, भाव संयम नहीं रहेगा। हाँ, ये भावों का तो खेल है, भावों में हम जिसको त्यागे हैं उसी को पाने हेतु या उसके प्रति राग रख करके हम चलते हैं, तो भाव संयम का घात रहेगा। और द्रव्य संयम, क्योंकि अभी उनको हाथों से ग्रहण नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, उसका उपयोग जीवन में नहीं हो रहा है, तो द्रव्य संयम सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये ऐसा है। तो कहते हैं दो प्रकार के संयमी हैं। द्रव्य संयम को धारण करने वाले साधु को द्रव्य संयमी और भाव संयम को धारण करने वाले साधु को भाव संयमी कहते हैं। जो भाव संयमी होते हैं उनके पास बाह्य पक्ष वाला संयम तो नियम से रहता है। जहां अंतरंग संयम रहेगा, भाव संयम, वहां द्रव्य संयम तो रहेगा ही रहेगा। परंतु जिनके पास द्रव्य संयम रहेगा उनके पास भाव संयम नियम से रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। रह सकता है तो आशा न हो, विषयों की आशा न हो तो रह सकता है, और विषयों की आशा हो नहीं रह सकता। तो एक द्रव्य संयमी साधु हैं और एक भाव संयमी साधु हैं। इसमें समीचीन साधु कौन, यथार्थ साधु कौन? भाव संयमी को यथार्थ साधु कहेंगे और द्रव्य संयमी को अयथार्थ साधु कहेंगे। तो इसी बात को लेकर के अपन को उनके प्रति क्या व्यवहार करना, ये भी समझाया है भगवान ने कि उनको नमोस्तु कहना या नहीं कहना, इसको भी समझा दिया है। तो क्या समझाया है इसके लिए एक गाथा है, पेज नंबर 6 पर देखो आप। ये जो बीच में चौकट में दिया है हेडिंग सहित, उसको पढ़ना है। असंयमी वंदना के अयोग्य, असंयमी वंदना के अयोग्य होते हैं। यानी 10 प्रकार का परिग्रह त्याग तो किया है, किंतु परिग्रह के प्रति आशा भाव अगर समाप्त नहीं हुई है तो वह वंदना के योग्य नहीं है, ऐसा कुंदकुंद स्वामी कहते हैं। गाथा देखो, नीचे के 2 लाइन आपको उच्चारण कराएंगे इस गाथा का। इस गाथा को याद भी करना चाहिए, बहुत ये गाथा याद करेंगे ना तो आपका चिंतन बहुत होगा और यथार्थ दिशा में चिंतन होगा। उच्चारण करेंगे, हाँ। असंजदम न वंदे वच्छ विहीनो विसो न वंदिज दोन्नि विहोन्ति समाना ईगो विन संजदो होदि असंजदम न वंदे वच्छ विहीनो विसो न वंदिज दोन्नि विहोन्ति समाना ये गोविन संजदो होदि। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। इसको समझने के बाद किसको क्या कहना नहीं कहना, चिंतन बड़ा गहरा आपका हो सकता है। हाँ? प्राकृत में है, ये गाथा प्राकृत भाषा में है। अष्ट पाहुड़ के दर्शन पाहुड़ में ये 26वें नंबर में आया है, ये गाथा है। इसका अर्थ देखो, अब असयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। क्या कहा? असयमी की वंदना नहीं करना चाहिए। भाव संयम से रहित नग्न रूप धारण करने वाले भी वंदनीय नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों समान हैं, इनमें से कोई एक भी संयमी नहीं है। अपन क्या सोचते हैं, पीछे कमंडलू देख करके, नग्न स्वरूप देख करके वंदना करना चाहिए, ऐसा सामान्यतः सभी लोगों की धारणा और विचार रहता है, इसलिए वो अर्घ्य बोलते समय बोलते भी हैं, पीछे कमंडलु धारी तुमको, क्या है वो, नमन तुम्हें हम करते हैं, पीछे कमंडलु धारी तुमको। भाव संयम से रहित है और द्रव्य संयमी हैं, और पीछे कमंडलु है मान लो, तो क्या वो संयमी हैं? नहीं है, तो पीछे कमंडलु तो है। यदि पिछी कमंडलु के कारण से साधु वंदनी होते हैं तो पिछी कमंडलु किसी के भी हाथ में दिया जा सकता है और नग्न वेश रूप भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में इस श्लोक के जो अर्घ्य पढ़ते हैं आप, उसमें दोष आएगा और ये गलत भी है, ये बोलना ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? ये पिछी कमंडलु हटा करके वहाँ पर रत्नत्रय शब्द को रखो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अन्यथा उसमें व्यापकता नहीं है, अर्थ ठीक से नहीं बैठता। क्या बोला जाए? देखो, बोल के देखो बैठता है या नहीं, बैठता है। रत्नत्रय धारी मुनिवर तुम्हें हम करते हैं, हाँ। वहां पर पिछी कमंडलु शब्द हटाकर रत्नत्रय को रखो तो रत्नत्रय जहां रहेगा वहां पिछी कमंडलु आ ही जाएंगे, कहना ही नहीं पड़ेगा। परंतु जहां की पिछी कमंडलु रहते हैं वहां रत्नत्रय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि आपने नमस्कार किया और रत्नत्रय नहीं था, बाद में देखा विचार करके, अरे तू यहाँ रत्नत्रय नहीं था, हमने पीछे कमंडलु को अर्घ दे दिया, तो अफसोस होगा बाद में कि हमने ऐसा क्यों किया। जैन धर्म बड़ा बारीक है, सोच समझ करके चलना पड़ता है, और ऐसा सोच समझ करके यदि नहीं चलेंगे तो अपना स्वयं का जो सम्यक्तो धर्म होता है वो डूब सकता है, अंधश्रद्धा की कोटी में आ सकता है, अंधश्रद्धा की कोटी में, अंध क्रियाओं की कोटी में आ सकता है। क्रिया तो कर रहे हैं नमस्कार करने की, लेकिन क्रिया विवेकपूर्ण न हो तो आपके पास जो सम्यक दर्शन गुण हैं वो दूषित हो सकता है, या तो उसका विनाश भी हो सकता है। सम्यक दर्शन में दोष कैसे लगते हैं मालूम है ना? जैसे गुण और दोषों का ज्ञान नहीं है और आप वंदना पूजन इत्यादि करते जा रहे हैं, क्या गुण क्या दोष पता नहीं, तो उस जीव के पास तो सम्यक दर्शन रहता ही नहीं, रहने का सवाल ही नहीं उठता। और जिनको गुण दोष का ज्ञान है, गुणों की पूजा करता है और दोषों से सावधान रहता है, तो वह सोच सोच करके चलने वाला होता है। कि गुण है या नहीं देख लेता है। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, गुण है या नहीं? आप जब दुकान में माल खरीदते हैं तो माल ठीक है या नहीं, खरीदने के योग्य है या नहीं देखते हैं, या ऐसा ही पहला खरीद लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं? ऐसा ही करते हैं क्या? पहला देख लिया, घर ले गए और माल फिर परीक्षा की, माल को बाद में देखा और ठीक नहीं निकला तो वापस देने जाओगे? दुकानदार कहता है पहले इसे देख करके लेना था, चाहिए था, तुमने क्यों नहीं देखा? हो सकता है मेरे माल को तुमने चेंज भी करके लाया हो, हम वापस नहीं लेंगे इसको। ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि नहीं? दुकानदार ले गए माल को वापस नहीं लेते, वापस देना हो तो वहीं देना चाहिए था, घर ले जा करके क्यों लाए इसको? चेंज करके भी ला सकते हो ना? हम कैसे विश्वास कर सकते आपके ऊपर? तो माल खरीदने के बाद परीक्षा नहीं की जाती, खरीदने से पहले माल को देखा जाता है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्या दोष क्या गुण, माल को पहले से ही देखा जाता है। आप क्या समझते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, धर्म के क्षेत्र में ऐसा कहते हैं, धर्म के क्षेत्र में ऐसा नहीं करेंगे, पहले तो हम नमस्कार करेंगे फिर बाद में परीक्षा करेंगे, और नमस्कार करने के बाद परीक्षा की और गुण नहीं निकले, और नमस्कार जो किया है वो गुणों की दृष्टि से जरूर किया है लेकिन गुण निकले नहीं बाद में, तो आपको अफसोस होगा कि नहीं? फिर बाद में कहते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो पहले नमस्कार कर लिया और ये गुण नहीं थे, अब मेरे को तो दोष तो लगा, अब क्या प्रायश्चित लूँ? पहले तो गलती करो और फिर बाद में प्रायश्चित का विचार करो, ये ठीक नहीं। सम्यक दृष्टि देव गुणों की वंदना करता है, गुणों का स्थान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, और दोषों का स्थान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। जहाँ चारित्र न हो वहाँ वंदना नहीं होती। पीछे कमंडल हो, दिगंबर वेश हो, देखो इस गाथा में 26वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, वहाँ वंदना नहीं होती। जब दिगंबर अवस्था की ही वंदना नहीं होती, वस्त्र नहीं है, दिगंबर है, पीछे कमंडलोधारी है, उसकी वंदना जब नहीं होती है असयम के कारण, फिर साक्षात जहाँ वस्त्र हो वहाँ क्या वंदना करने का विचार भी कर सकते हैं? जहाँ वस्त्र हो वंदना के योग्य नहीं, नमोस्तु के योग्य नहीं, और आप हो सकता है अज्ञान अवस्था में आप वंदना करते थे और भगवान के समान ही उनके सामने चावल भी चढ़ाते थे, बादाम भी चढ़ाते थे, पुष्प भी चढ़ाते थे, ये सब क्रियाएं अंधी क्रियाएं हैं या सम्यक क्रियाएं हैं? अंधी क्रियाएं हैं ना, जैन धर्म को समझे नहीं और जैन धर्म का पालन कर रहे हैं, पालन में जो भी किया जाएगा वो सब अंधेरे की कोटी में आएगा, अंधेरा है वो क्रिया, कोई एक भी समीचीन नहीं है। ये जैन धर्म है, इस धर्म के भीतर नग्न स्वरूप की ही वंदना की जाती है, किंतु कौन सा नग्न? रत्नत्रय स्वरूप नग्न वेश की वंदना की जाती है, और उसमें भी वेश वंदनी नहीं होता बल्कि उस वेश के भीतर जो रत्नत्रय गुण हैं वे गुण वंदनी होते हैं। हम्म, पहला ये सोचो गुण रहित दिगंबर विष वंदनी नहीं, ये आया कि नहीं आया? आया। फिर गुण भी दिखना और वेश भी दिखना दोनों अनिवार्य हो गया क्या? नहीं, अनिवार्य हो गया। जहां साक्षात वस्त्रधारी हैं उसकी कैसे आप वंदना करते हैं, कैसे चावल चढ़ाते हैं, कैसे बादाम चढ़ाते हैं, कैसे झुक जाते हैं आप, ये पहला विचार करो। वस्त्रधारी की वंदना क्या जैन धर्म में है? अक्षत चढ़ाना, बादाम चढ़ाना और नमस्कार करना, ये भी अपने तरफ से हो रहा है क्या? नहीं, देखो हो रहा है, यही समझना अपने को। ये नहीं समझ पाए तो जैन धर्म समझ नहीं पाए, और जैन धर्म समझ नहीं पाए तो आप कुछ भी करो, अंधी क्रियाओं से आत्मा का कल्याण नहीं होता, जीवन का भला भलाई नहीं होती। साक्षात वस्त्रधारी तो वंदनी पूजनी जैन धर्म में है नहीं। जिनके पास दो गुण हैं, सम्यक दर्शन भी है और सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन संयम नहीं है, वो पूजनी नहीं, द्रव्य चढ़ाने के लायक नहीं है वो। आप जहाँ कहीं भी द्रव्य चढ़ा करके वंदन पूजन करते हैं, वंदना तो करते ही हैं, आपको ये विवेक नहीं है कि द्रव्य चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, इतना भी ज्ञान नहीं है, बेसिक ज्ञान जैन धर्म का। क्या
एक प्रश्न आता है महाराज जी, समय से समय आप दो रोटी देने के लिए हमारी परीक्षा करते हो क्या?
हाँ करेंगे ना, दो परीक्षा, इसलिए वो दो रोटी नहीं, उसमें तो हमारी रोटी खराब हो रही है, इसलिए सम्यक दर्शन रोटी है क्या? नहीं खाने की। अगर आपको दो रोटी देने से हमारी रोटी बिगड़ जाए तो आपको रोटी देने से हमको क्या लाभ मिला? ये चिंतन करो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। सामान्य चिंतन से अपने को भूल जाएंगे और पर का उपकार करने में हम निकल जाएंगे। करुणा भाव, पात्रों पर करुणा भाव रखना ही नहीं है, दुखियों पर, दुखियों पर जो पात्र नहीं हैं वो दुखी हैं क्या? दीन ही नहीं क्या? भिक्षा मांग रहे हैं क्या? पदार्थों का अभाव है क्या? यातना पीड़ित हैं क्या? फिर आप कैसे करेंगे? सही बात है, तो श्रावक श्रावक धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है उसको ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं करता, और मुनि भी आचरण नहीं करता है तो उसको भी ज्ञान नहीं है इसलिए आचरण नहीं करता है, चर्चा उसकी नहीं, जिनको ज्ञान आ चुका है उनकी चर्चा है। ये आता है प्रश्न, परंतु इसका अर्थ ऐसा है क्या फिर जिनको ज्ञान नहीं है दोनों को, यानी मुनि को भी ज्ञान नहीं और श्रावक को भी ज्ञान नहीं, तो जिनको ज्ञान नहीं उनके लिए ज्ञान आने के पश्चात ये क्रिया ऐसा करेगा भी नहीं और करता भी नहीं, यदि करता है तो दोष तो लगता है। तो अपने को कोई भी कार्य ज्ञान पूर्वक करना है क्या अज्ञान पूर्वक करना है, ये ठहराना है अपने व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत। अंतरंग भावों की परीक्षा नहीं, क्यों नहीं कर सकता? देखो हाँ ठीक नौ वक्त लग जाता है ना, तो जल्दबाजी क्यों करे। ठीक है, दिगंबर दिख रहे हैं आप, सुनो क्वेश्चन उत्तर प्रश्न समझ में आ गया, लंबा चौड़ा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, प्रश्न समझ में आ गया। मुनि महाराज सामने आ गए, जल्दबाजी करने की जरूरत है क्या? और मुनि के मन में भी ऐसा विचार रहेगा क्या, ये श्रावक है मुझे जल्दबाजी पहले नमस्कार करे, जल्दबाजी से पहले मुझे नमस्कार करे, नमस्कार की आशा मुनि के मन में होती है क्या? नहीं होती। और फिर आप क्यों कर रहे हैं, उनको नहीं होती फिर भी आप जल्दबाजी कर रहे हैं। सोच विचार करके करे तो कोई बड़ा हानि है क्या, नुकसान है क्या? नुकसान से अपन बच सकते कि नहीं? अभी नहीं करेंगे, थोड़े समय बाद करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ना, और इसमें लाभ है क्या नहीं, उनको भी लाभ है और आपको भी लाभ है। हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, फिर जल्दबाजी क्यों? माल पहले जल्दी नहीं खरीदना, खरीद करके घर में ले जाकर अफसोस नहीं होना, थोड़ा ठहरो ना, क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं इतना? ये जल्दबाजी शायद करने वालों ने ही बिना सोचे समझे ये लिख दिया क्या, पिछी कमंडलू। रत्नत्रय नहीं लिखा होना, सोचना था चाहिए था ना, सोच समझ के लिखना चाहिए था। और जैसा भी वो लिखेंगे वैसा लोग पढ़ेंगे और वैसी धारणा बन जाएगी, तो गलत धारणा बनती है और फिर उसके अनुसार हमारी चर्या भी बन जाती है। तो पंचम काल में क्या आपको दोष करो और नुकसान पाओ और नुकसान से अपना अहित करो, ऐसा नियम बनता है क्या? विवेक से करेंगे तो चतुर्थ काल है, अविवेक से करेंगे तो पंचम काल है। पंचम काल में भी विवेक से चलने वाले जीव है क्या नहीं, वो जल्दबाजी करते हैं क्या? नहीं है। जल्दबाजी नहीं करते, सोच समझ करके ही करते हैं। विवेक तो होना ही चाहिए, पहले खरीदो बाद में परीक्षा करो, ये दुकान में नहीं, ये क्रिया दुकान में नहीं होती है आपके तरफ से, तो फिर धर्म के क्षेत्र में इसके लिए छूट कैसे मिल सकता है? धर्म तो व्यवहार सांसारिक क्रियाओं से भी बारीक है, यहाँ पर और भी सावधानी से चलना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। सांसारिक क्रियाओं से भी ये सर्वश्रेष्ठ और सूक्ष्म है क्या नहीं, तो इसमें और भी सोच समझ करके चलना पड़ता है। ज्ञानी जीव विचार करके ही कार्य करते हैं और अज्ञानी जीवों को विचार करने के लिए टाइम ही नहीं रहता, फुर्सत नहीं रहता, उनको ये जल्दबाजी रहती है कि पहले करो बाद में देख लेंगे, पहले करो पट 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 करो, पहले पट पट सभी काम किया और बाद में सभी काम हमारा खोटा निकला तो नुकसान किसको? स्वयं को। तो स्वयं के दोष से बचने के लिए है तो सावधानी से चलना पड़ता है। अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, किसी को बुरा लगे या उनका नुकसान हो ये भाव नहीं रहते, सामने वाले को बुरा लग क्या लगेगा ऐसा कह करके, उनको बुरा नहीं लगे इसलिए जल्दबाजी करे क्या, उनको क्या लगेगा ऐसा कहकर जल्दबाजी से हम पहले काम करें जो करना है और फिर बाद में देखें क्या रिजल्ट निकलता है, उसका नुकसान किसको होता है, स्वयं को क्या दूसरे को। अब उससे पूछो, हमने तो जल्दबाजी से आपको आपके साथ व्यवहार किया, जो करना चाहिए तक कर लिया, हमको क्यों दोष लगा ये पूछो। वो कहेंगे तुमको किसने कहा था करने के लिए, सोच समझ करके तुमने क्यों नहीं किया। मंदिर जा रहे हैं और दुकान में एक नारियल भी खरीद रहे हैं तो एक कंकर उठाकर पहले टक 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 बजा करके देखते हैं, इसे क्या जरूरत है मंदिर में जा करके ही देखना बजा करके वहाँ का पानी है क्या नहीं और अच्छी सी आवाज़ आ रही है क्या नहीं। भगवान को चढ़ाने से एक मिनट पहले वहाँ परीक्षण करोगे कि दुकान में परीक्षण करोगे, दुकान में तो थोड़ा सा समय लगेगा ना, जल्दबाजी क्या है। पहले उठा लो नारियल को, एक कंकर ले लो हाथ में और बजा के देख लो, ठन ठन आवाज आया तो बढ़िया है, डब डब आवाज आया तो गड़बड़ है। दुकानदार को बुरा लगेगा क्या आपके बजाने से, दुकानदार को बुरा लगेगा तो उस दुकान से नारियल नहीं खरीदना जहां बुरा लगता है। हम खरीदने के लिए आए हैं, नुकसान पाने के लिए थोड़ी आए हैं, हमको खरीदना है। दुकानदार को बुरा लग भी सकता है, अरे मेरे माल पर भी इनको विश्वास नहीं, ऐसा दुकानदार को बुरा लग सकता है। परंतु रत्नत्रयधारी मुनि जिस दुकान के मालिक हैं, इस दुकानदार को तो बुरा लग ही नहीं सकता। और यदि बुरा लगे तो वो दुकानदार ही नहीं, उसके दुकान में माल ही नहीं है। जिसके जीवन में रत्नत्रय होता है उसको बुरा नहीं लगता, और जिसकी दुकान में रत्नत्रय है ही नहीं और कोई दुकान में नहीं आ रहा है तो उनको बुरा लगता है, क्यों नहीं आ रही, अरे माल न होने से तो नहीं आ रहे। धर्म की क्रियाएं विचार के बिना नहीं करना, यही सम्यक्त्व का लक्षण है। श्रावक धर्म में प्रमुख धर्म संयम है क्या सम्यक्तु है, हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं आप, इसमें भी विचार नहीं करते, देखो उत्तर दे ही देते हैं। सम्यक दर्शन प्रमुख है कि संयम, संयम तो आता नहीं है, परिग्रह छोड़े बिना संयम आता है क्या, नहीं आता। अगर आ भी जाए तो एक देश संयम आ सकता है, अनुवृत्ति बन सकता है, प्रतिमाधारी बन सकता है, पर प्रतिमाधारी बनने से पहले सम्यक्त्व का महत्व है क्या प्रतिमा का ही महत्व है, तो फिर इस सम्यक दर्शन में दोष कैसे कैसे आ सकता है, किस संदर्भ में आ सकता है, ये क्या स्वयं के बारे में आप विचार नहीं करोगे। अपना माल खराब न हो ऐसा विचार न करोगे, खराब होने का कार्य पहला करोगे और फिर खराब हुआ क्या नहीं बाद में देखोगे, हाँ पहले से देखना चाहिए, पहले से ही देखकर माल खरीदना। आप इतने भी परीक्षा नहीं कर पाते क्योंकि ज्ञान न होने से, यही ज्ञान नहीं था ना जो अभी चर्चा हो रही है, इतना ही ज्ञान नहीं था। इसलिए साक्षात वस्त्रधारी होते हुए भी जो नग्न स्वरूप है ही नहीं, उसको आप अक्षत चढ़ा करके नमस्कार करती थी, करती थी कि नहीं करती थी? अब वो अतीत हो गया आपके लिए, वर्तमान में नहीं करते हैं तो बात अलग है, करते हैं तो आपकी दशा क्या है, अज्ञान है क्या ज्ञान है? वो अज्ञान है। तो इस अज्ञान से नुकसान किसका हो रहा है? आत्मा का, स्वयं का हो रहा है। उसमें किस माल का नुकसान हुआ? तीन प्रकार का माल होता है अंदर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। किस माल का नुकसान हुआ? सम्यक दर्शन का नुकसान हुआ और सम्यक ज्ञान का नुकसान। दोनों, ज्ञान है ही नहीं तो कैसे करोगे? सम्यक ज्ञान हो तो आप ये गलती नहीं करोगे, पर ज्ञान न होने से तो नुकसान हो रहा है ना, समझदारी नहीं है। ये वस्त्रधारी हैं, प्रत्यक्ष वस्त्रधारी हैं, जैन धर्म के अनुसार प्रत्यक्ष वस्त्रधारी को ये द्रव्य चढ़ाए जाते हैं कि नहीं, विचार ही नहीं, कभी विचार ही नहीं किया, न ही किसी से सुना, न ही स्वाध्याय किया। ऐसी परिस्थिति में हम नुकसान किसका कर रहे हैं? या तो आप भयभीत होकर के द्रव्य चढ़ाते होंगे, पहले से चढ़ाते आए हैं, आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर वो टूट तो नहीं पड़ेंगे? तो ये जो भय है, ये भय भी तो अज्ञान के कारण से है ना। भय क्यों लगता है? अज्ञान के कारण, समझदारी नहीं है, समझदार ही नहीं है इसलिए भय लगता है। और ज्ञान आने पर आपको भय लगेगा ही नहीं, क्योंकि सही रास्ता जब पता चल गया तो मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं फालतू ही डर रहा था, ये कुछ करेगा ऐसा समझ रहा था, कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता। आप गलती कर रहे थे और गलती को छोड़ दिया, तो सामने वाले को गलत नहीं लगता, आप स्वयं अपने लिए, स्वयं के लिए गलती कर रहे थे, स्वयं को नुकसान हो रहा था और दूसरे के वजह से हो रहा था, तो उस दूसरे के साथ व्यवहार छोड़ने से उनको बुरा नहीं लगता, किंतु आपके मन में व्यर्थ का भय बैठा रहता है, व्यर्थ का भय कि ऐसा ना हो कि सामने वाला कुछ मुझे करे, कर न दे, ऐसा व्यर्थ का भय बैठ जाता है। भय व्यर्थ रूप ही होता है, उस भय को करना ही नहीं। ज्ञानी कभी किसी से डरता नहीं, समझदार डरता नहीं, और समझदार को कुछ होता भी नहीं। वो जो सोचते हैं मुझे वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो तो ऐसा कि क्या हो जाएगा, भविष्य का बहुत ज़्यादा सोचता है, भविष्य में क्या होगा। ज्ञानी भविष्य का नहीं सोचता, वर्तमान में मैं ठीक हूँ क्या नहीं, मुझे दोष लग रहा है क्या नहीं, इतना ही देखता है। सम्यक दर्शन को यदि श्रावक धारण करता है तो डरेगा भी क्या? सम्यक दृष्टि बनने के बाद भी डरता रहेगा क्या? हम चावल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसा डरेगा क्या? नहीं डरेगा। डरता वो है जिसको अभी कुछ पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो हमारे लिए कुछ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, नुकसान वगैरह, ये ज्ञान जिसको नहीं है वो डरता रहता है। जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक डरता रहता है, ज्ञान होने के बाद डर भी समाप्त हो जाता है। ऐसे कितने ही श्रावक हैं भारतवर्ष में, इस धरती पर निर्दोष सम्यक्तों का पालन करते हैं, वे निर्दोष धर्मात्मा हैं, सम्यक दर्शन का विवेकपूर्ण पालन करते हैं, कभी दोष नहीं लगाते। ऐसे कितने ही दिगंबर मुनि हैं जो स्वयं सोच समझ करके चलते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, अपनी संपत्ति संपदा को संभालते हैं, सतत उसका चिंतन रहता है, वो भी नहीं डरते। जो रत्नत्रय का अच्छी तरह से ज्ञान रखते हैं वो कभी नहीं डर सकते। ये डर अज्ञानियों को होता है, जिसको रत्नत्रय का ज्ञान ही नहीं है। सम्यक दर्शन क्या होता है, उसमें दोष कैसे लगते हैं, उसके दोष कितने हैं, उनको छोड़ने से हमारे जीवन में क्या परिणाम निकलता है, ये जो विचार है, ये जो करते हैं इस विचार को, वो कभी डर ही नहीं सकते। आपके जीवन में यदि डर बचा है तो वो डर इसलिए बचा है कि आपको ज्ञान कम है। अभी कहीं ना कहीं आपके पास ज्ञान की कमी है, और वो ज्ञान की पूर्ति हो जाएगी तो आप भी नहीं डरेंगे। हम डरते हैं क्या दिगंबर मुनि? हम भी तो ऐसे ही करते हैं। आप जैसे सोचेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन डूब जाएगा। कोई एक दिगंबर मुनि आ रहे हैं तो हमको भी ऐसा ही सोचना चाहिए, पहले सब क्रियाएं करनी चाहिए उनके प्रति, नमस्तु नमस्कार सब करना चाहिए, और बाद में परीक्षण करना चाहिए। ऐसा भगवान कहते हैं क्या, बाद में करो? हमारे लिए क्या आदेश है भगवान का, पहला देखो फिर बाद में जाओ? ये आदेश हैं या पहले करो फिर बाद में नुकसान पाओ, फिर बाद में विचार करो, प्रायश्चित करो, फिर संभलो जीवन में जिंदगी भर, ऐसा उपदेश है क्या? श्रावक को भी ऐसा उपदेश नहीं और मुनि को भी नहीं। ये गाथा क्या बता रही है देखो ना, असंजदम न वंदी वच्छ विहीनो वि सो न वंदी च, दोन्नी भी होती समाना ए गोविन संजदो होती, रत्नत्रय से रहित दिगंबर वेश पिंछी कमुंडलू का कमुंडलू से सहित है, वो असयम की कोटि में आता है। रत्नत्रय नहीं है इसलिए असयम की कोटि में आता है, वह असयम है, असयमी जीव वंदनी नहीं होता। सानिध्य पाने पर मिलेगा क्या, पाए बिना मिलेगा? पाने का पुरुषार्थ करोगे तो मिलेगा या पाने का पुरुषार्थ किए बिना मिलेगा? तो आपके पास ज्ञान है, विवेक है, तो आप तो जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा करोगे ना। विवेक से ही व्यवहार करना पड़ेगा जिससे अपने को भी नुकसान न हो जाए, है ना, अपने को भी नुकसान न हो जाए और उनसे हम बच भी पाए। उनसे डरना है क्या? देखो देखो, अतिथि कौन कहलाता है? रत्नत्रयधारी अतिथि हैं क्या? रत्नत्रय से रहित को अतिथि कहते हैं। असयमी अतिथि होता है क्या? अतिथि की क्या परिभाषा समझते आप? रत्नत्रय से सहित होना या रत्नत्रय से रहित होना, फिर अतिथि कहो ना उसकी, जिसको अतिथि कहना उसी को अतिथि कहो। जो अतिथि है ही नहीं, ऐसे अतिथि आ जाए तो क्या करना, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं? अतिथि है ही नहीं, जो आए हैं वो अतिथि नहीं है, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं? श्रावक को भी विवेकी होना आवश्यक है। श्रावक यदि शिथिलाचारी होगा, अद्वा तद्वा करेगा, सबके लिए समान रूप से देखेगा, तो फिर उसका पहले तो उसका स्वयं का धर्म डूब जाएगा, और जो सामने वाला जिसका डूबा हुआ ही है वो डूबा हुआ ही रहेगा, वो तो सुधरेगा नहीं। जो सुधरता नहीं उसके प्रति आदर भाव रखो, ये कहाँ है? सुधरने की संभावना हो फिर भी ठीक है, कि सुधरना चाहते हैं इसलिए हम स्वागत करते हैं। सुधारना चाहने वालों को स्वागत करोगे क्या, नहीं चाहने वालों को भी स्वागत करते रहोगे? ये कौन सी मर्यादा है, कौन सी मान मर्यादा रख रहे हैं जो सुधरना चाहते भी नहीं और उसके स्वागत के लिए आप खड़े हैं कर्तव्य समझकर? ये कौन सी मर्यादा हो गई? न आप मार्ग पर लग सक रहे हैं, न उनको मार्ग पर लगा पा रहे हैं और फिर भी स्वागत कर रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं है, तो इसलिए है भी नहीं, एक कहीं भी उत्तर नहीं, आगम में भी नहीं क्या करना चाहिए। तो आगम में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं, उस काम को करने का सोचना भी दोष है, सोचने से भी दोष लगता है। आगम में क्या आदेश मिल रहा है ये क्यों विचार नहीं, ये विचार क्यों नहीं करना चाहिए? देखो क्या मिल रहा है आदेश, असंजदम न वंदे, हो गया कि नहीं? भगवान का आदेश मिल गया, उतना ही करो, ज्यादा मत सोचो। असंयमी जीव वंदनीय नहीं है, तो इससे ज्यादा क्या सोच रहे हो? फिर भी क्यों सोच रहे हैं? सामने वाला गुणधारी बनना चाहता है तो स्वागत करो, गुणधारी बनना ही नहीं चाहता है फिर भी क्यों सोच रहे हो? भगवान ने सोचने के लिए किया है, कहा है क्या? नहीं कहा है, नहीं कहा है तो क्यों सोच रहे हैं आप? आप ऐसा सोचोगे तो स्वयं भी नुकसान में पड़ोगे और दूसरे का नुकसान तो है ही। सामने वाले के पास गुण नहीं है तो नुकसान ही नुकसान, उनका तो नुकसान हो ही रहा है, उनके पीछे पीछे जाकर अपने सम्यक दर्शन ज्ञान को भी समाप्त करोगे और क्या करोगे? भगवान ने जितना कहा था उतना नहीं करने से यही होगा, स्वयं का नुकसान होगा इसमें। ऐसा होता है ना, वही भगवान के आदेश को ज्यों का त्यों अपना न अपनाने से भी अपना सम्यक दर्शन जा सकता है कि नहीं जा सकता है? दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना, असंयमियों के चक्कर में नहीं पड़ना, संयमियों के चक्कर में रहना, चक्कर काटना 10 बार अच्छा है, संयमियों के प्रति चक्कर काटो, असंयमी का चक्कर काट करके क्या करोगे? चक्कर काटने लायक ही नहीं। तो मंदिर में जाते ही, जाते समय ही विचार करना है कि यहाँ मंदिर में भी रत्नत्रयधारी कौन और रत्नत्रयधारी कौन नहीं, ये विचार कभी आता है? आता है कि नहीं आता? असंयमी का लक्षण ये है, दो प्रकार से असंयमी का लक्षण बनता है। देखो जिसके पास सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो, दो ही हो और संयम न हो, तो वो भी असंयमी, ठीक है? एक प्रकार का असंयमी ये कि सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है लेकिन संयमी नहीं, चारित्रवान नहीं है, दिगंबर नहीं है, न अंतरंग संयम है न बहिरंग संयम है, बहिरंग से भी परिग्रहधारी है और अंतरंग से भी परिग्रहधारी है, तो ये असंयमी है। ये असंयमी का एक लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही नहीं, ये क्या असंयमी नहीं? ये क्या असंयमी नहीं? ये भी असंयमी है। तो दो प्रकार के असंयमी, रत्नत्रय से रहित एक और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से सहित किंतु चारित्र से रहित एक, दो ही प्रकार के असंयमी हैं।
कायिक क्रिया के लक्षण जानने से
बाह्य क्रिया देखने से समझ में आवे ऐसा लक्षण। बाह्य क्रिया तो यही आप देख सकेंगे कि वो उपदेश में क्या बोलते हैं। उपदेश देना बाह्य क्रिया है, उनकी वाणी खिरती है तो संकेत मिलते हैं। मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हैं या संसार मार्ग का, इतना समझ में नहीं आता क्या? आता, ये बाहर है क्या अंदर है? ये बाहर का ही है। मोक्ष मार्ग का अगर उपदेश दे रहे हैं तो उसमें वो असैमी की वंदना करो ऐसा आएगा ही नहीं। ये दो प्रकार के असैमी, उनकी वंदना करो ये आएगा ही नहीं। क्या आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हमारे उपदेश में कभी इतने दिनों में असैमी की वंदना करो ऐसा आया? तो ये बाह्य क्रिया को देखो ऐसा। फिर से क्या पूछा? मोक्ष मार्ग पर चलो। मूर्ति हाँ सही है ना। देखो भगवान ने जैसा कहा है वैसा वचन चाहे विद्वान गृहस्थ कहें या मुनि कहें, भगवान ने जैसा कहा है वैसा कहते हैं तो वो उपकारी हैं हमारे लिए। रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का ही उपदेश दें तो वो विद्वान रहें, श्रावक रहें या मुनि रहें, वो उपकारी हैं। वो असयमी जरूर हैं, वस्त्रदत्त सहित है ना, इसलिए असयम सयम सम्यक चारित्र तो नहीं। उनके पास हो सकता है सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो सकता है। विद्वान सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी होता है, पर विद्वान क्या संयमी भी रहेगा? नहीं रहेगा। तो विद्वान की पूजा हम करते हैं क्या? उनको द्रव्य चढ़ाते हैं क्या? सम्यक दृष्टि है इसलिए। फिर आप सोचो मंदिर में भी किसको द्रव्य चढ़ाना और किसको द्रव्य नहीं चढ़ाना? मंदिर में जाने के बाद भूल जाना चाहिए क्या सब कुछ? और विद्वान को, विद्वान की बात कही तो विद्वान के लिए नहीं चढ़ाना, क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा था। तो हम जितना कह रहे हैं उतना ही पकड़ोगे, हर जगह नहीं देखोगे क्या किसको चढ़ाना किसको नहीं चढ़ाना? विवेक से श्रावक विवेकी होता है, विवेक से ही हर काम करता है हर जगह। समय हो गया है जिनवानी।
सकल द्रव्य के मिशन से यह अर्घ्य अमूल्य सजाए है, इसी बहाने मोक्ष में हम व्याकुल होते हैं। रत्नत्रय धारी मुनिवर नमन तुम्हें हम करते हैं।
मुनि सुनो रत्नत्रय धारी मुनिवर को लगा दो तो वो आराम से बैठ जाए, को भी लगाओ।
रत्नत्रय धारी मुनिवर को नमन तुम्हें हम करते हैं।
नहीं बेटा, नहीं बेटा, फिर से बोलो। नहीं नहीं
रत्नत्रय धारी मुनिवर नमन तुम्हें हम करते हैं।
रत्नत्रय धारी मुनिवर को कहने की अपेक्षा मुनि को कह दो, देखेंगे।
रत्नत्रय धारी मुनि को नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य की दाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। श्री निग्रंथ मुनि के चरणों में अभिवादन है। आपकी पावन प्रतिमा लख मेरा मन भी पावन है। मेरा भाव की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बेटने लाया हो। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत युग। ओम रीम श्री परम पूज्य क्षा गुरु श्री नियम सागर मुनिंद्राय सत्संग विराजमान जिनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामिति स्वा जो लो परम पूज्य क्षा गुरु श्री नियम सागर मुनि महाराज की। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रुत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहा दी जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवादे कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांद रहे अब हम नाम